This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Hindi, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Hindi, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Hindi, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
पाठांश क इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
निमित समुदाय में बुजुर्गों के प्रति बच्चों का सहयोग अभियान का श्री गणेश करते हुए मुख्य अध्यक्ष का भाषण सुनेंगे।
उपस्थित समुदाय के सदस्यों एवं साथियों, नमस्कार। आज की बैठक में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बुजुर्ग पड़ोसियों की देखभाल। मैं यहां उपस्थित बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि वे मेरे विचारों को ध्यान से सुने। मुझे अब भी याद है कि मेरे माता पिता एक बुजुर्ग पड़ोसी के सुख दुख में उनका बहुत ध्यान रखते थे। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। कई अनोखी बातें कहानियां सुनाकर मेरा ज्ञानवर्धन करती और बहुत ख्याल रखती थी। मुझे इतना संतुष्ट देख मेरे दोस्त भी उनसे मिलने आते और प्रत्येक क्षण आनंदित होते। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से सारा आस पड़ोस खुशहाल रहता था। बचपन से ही मुझे यह सीखने का सुख मिला कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बच्चों के लिए अनमोल है। बुजुर्ग पड़ोसियों के साथ मिलकर हम सुख समृद्धि और सहयोग का वातावरण बना सकते हैं। इससे हमारे समुदाय में एकता बढ़ेगी और बच्चों को सही मार्गदर्शन पाने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैंने सीखा है कि जब हम अपने बुजुर्ग पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो समुदाय में एक अनूठा बंधन बनता है। इन्हें केवल पड़ोसी ना माने वरन अपने परिवार का सदस्य जाने, इनकी यथावश्यक गतिविधियों में सहयोग प्रदान करें। हम इनके सुझावों और अनुभवों से शिक्षा ग्रहण कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक बड़े परिवार की अनुभूति पा सकते हैं जिसकी कमी आज खल रही है। जब हमारे बच्चे अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने व्यक्तित्व को निखार कर समाज में सौहार्द्रता लाएंगे तो क्या पता उनका ये प्रयास समाज की उन्नति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाए। मेरा सपना है कि हम अपने इस समुदाय में एक अनूठा और प्रेमपूर्ण वातावरण बना पाएं, जहां हर बुजुर्ग सदस्य परिवार की तरह अपनापन महसूस कर एक दूसरे का सहयोगी बन एक दूसरे के विकास का कारण बन सके। मेरी आप सभी से विनती है कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को इस महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल करें, ताकि हमारे समुदाय में एक नया उदाहरण कायम हो सके। शुभकामनाएं। धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
उपस्थित समुदाय के सदस्यों एवं साथियों, नमस्कार। आज की बैठक में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बुजुर्ग पड़ोसियों की देखभाल। मैं यहां उपस्थित बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि वे मेरे विचारों को ध्यान से सुने। मुझे अब भी याद है कि मेरे माता पिता एक बुजुर्ग पड़ोसी के सुख दुख में उनका बहुत ध्यान रखते थे। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। कई अनोखी बातें, कहानियां सुनाकर मेरा ज्ञानवर्धन करती और बहुत ख्याल रखती थी। मुझे इतना संतुष्ट देख मेरे दोस्त भी उनसे मिलने आते और प्रत्येक क्षण आनंदित होते। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से सारा आस पड़ोस खुशहाल रहता था। बचपन से ही मुझे यह सीखने का सुख मिला कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बच्चों के लिए अनमोल है। बुजुर्ग पड़ोसियों के साथ मिलकर हम सुख समृद्धि और सहयोग का वातावरण बना सकते हैं। इससे हमारे समुदाय में एकता बढ़ेगी और बच्चों को सही मार्गदर्शन पाने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैंने सीखा है कि जब हम अपने बुजुर्ग पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो समुदाय में एक अनूठा बंधन बनता है। इन्हें केवल पड़ोसी ना माने वरन अपने परिवार का सदस्य जाने, इनकी यथावश्यक गतिविधियों में सहयोग प्रदान करें। हम इनके सुझावों और अनुभवों से शिक्षा ग्रहण कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक बड़े परिवार की अनुभूति पा सकते हैं जिसकी कमी आज खल रही है। जब हमारे बच्चे अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने व्यक्तित्व को निखार कर समाज में सौहार्द्रता लाएंगे, तो क्या पता उनका ये प्रयास समाज की उन्नति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाए। मेरा सपना है कि हम अपने इस समुदाय में एक अनूठा और प्रेमपूर्ण वातावरण बना पाएं, जहां हर बुजुर्ग सदस्य परिवार की तरह अपनापन महसूस कर एक दूसरे का सहयोगी बन एक दूसरे के विकास का कारण बन सके। मेरी आप सभी से विनती है कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को इस महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल करें, ताकि हमारे समुदाय में एक नया उदाहरण कायम हो सके। शुभकामनाएं। धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट 30 सेकंड हैं। पाठांश ख। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप मनुष्य के स्वास्थ्य में पालतू जानवरों की भूमिका पर एक पशु चिकित्सक के साथ चर्चा सुनेंगे।
नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में स्वागत है। आज हम स्टूडियो में प्रसिद्ध पशु चिकित्सक डॉक्टर महेश का स्वागत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने इंसानों के स्वास्थ्य के कार्यक्रम में पशु चिकित्सक को क्यों बुलाया है, तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैंने हाल ही में एक लेख पढ़ा कि पालतू कुत्ते इंसानों के तनाव को कम करने में मदद करते हैं, क्या ये सच है?
सरिता जी, यह कोई भी पालतू जानवर हो सकता है, केवल कुत्ते ही नहीं। इन जानवरों के साथ रहने से लोगों में, बड़े हो छोटे हो, स्त्री हो या पुरुष, तनाव कम होता है। वे न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करते हैं।
जब मैं घर पहुंचती हूँ तब मेरा प्यारा कुत्ता अपनी गेंद लाकर खेलने के लिए उछलता है, तब मेरी थकान मानो एकदम गायब हो जाती है।
एकदम सही कहा आपने सरिता जी, थकान तो कम होगी ही और दिन भर बैठे रहने के कारण शरीर में जो अकड़न होगी वह भी ठीक हो जाएगी। शरीर हल्का और मन तरोताजा हो जाएगा। पालतू जानवरों के सानिध्य में हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं।
यही नहीं डॉक्टर साहब, जब यह पालतू जानवर कुछ लुभावनी हरकतें करेगा या अपनी भावपूर्ण आंखों से हमारी ओर देखेगा तो हम मुस्कुराने लगेंगे।
और इन गतिविधियों के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण रसायन उत्पन्न होते हैं जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
चलिए इसी जोश के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि लोग उत्साहित होकर जानवर घर ले आते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें लगता है कि यह एक बोझ है। इस पर आपके विचार क्या हैं?
यह वाकई में बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। पालतू जानवर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एक पालतू जानवर का उपयोग जीवन में अस्थायी कमी को भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एक आजीवन प्रतिबद्धता है। उनका जीवन काल हमसे कम होता है। वे अपनी बाल्यावस्था हम पर न्योछावर करते हैं, तो बुढ़ापे में हमें उनकी अच्छी देखभाल करनी ही चाहिए।
जिनके घर कुछ कारणवश पालतू प्राणी नहीं होते, वे ऐसा लाभ कैसे पा सकते हैं?
आजकल कई ऐसे पशु चिकित्सालय हैं जहां मानसिक चिकित्सा करने वाले जानवरों के साथ समय व्यतीत करके लोग लाभान्वित हुए हैं।
डॉक्टर महेश, आप किस तरह से ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं?
सरिता जी, मेरे पशु चिकित्सालय में भी यह सुविधा है। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने मरीजों को मेरे अस्पताल में भेजते हैं। इन लोगों को बेहतर होते देख बहुत अच्छा लगता है।
इस अंतर्दृष्टिपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद डॉक्टर महेश। अगले हफ्ते तक हंसते रहें, स्वस्थ रहें।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में स्वागत है। आज हम स्टूडियो में प्रसिद्ध पशु चिकित्सक डॉक्टर महेश का स्वागत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने इंसानों के स्वास्थ्य के कार्यक्रम में पशु चिकित्सक को क्यों बुलाया है, तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैंने हाल ही में एक लेख पढ़ा कि पालतू कुत्ते इंसानों के तनाव को कम करने में मदद करते हैं, क्या ये सच है?
सरिता जी, यह कोई भी पालतू जानवर हो सकता है, केवल कुत्ते ही नहीं। इन जानवरों के साथ रहने से लोगों में, बड़े हो छोटे हो, स्त्री हो या पुरुष, तनाव कम होता है। वे न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करते हैं।
जब मैं घर पहुंचती हूँ तब मेरा प्यारा कुत्ता अपनी गेंद लाकर खेलने के लिए उछलता है, तब मेरी थकान मानो एकदम गायब हो जाती है।
एकदम सही कहा आपने सरिता जी, थकान तो कम होगी ही और दिन भर बैठे रहने के कारण शरीर में जो अकड़न होगी वह भी ठीक हो जाएगी। शरीर हल्का और मन तरोताजा हो जाएगा। पालतू जानवरों के सानिध्य में हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं।
यही नहीं डॉक्टर साहब, जब यह पालतू जानवर कुछ लुभावनी हरकतें करेगा या अपनी भावपूर्ण आंखों से हमारी ओर देखेगा तो हम मुस्कुराने लगेंगे।
और इन गतिविधियों के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण रसायन उत्पन्न होते हैं जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
चलिए इसी जोश के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि लोग उत्साहित होकर जानवर घर ले आते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें लगता है कि यह एक बोझ है। इस पर आपके विचार क्या हैं?
यह वाकई में बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। पालतू जानवर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एक पालतू जानवर का उपयोग जीवन में अस्थायी कमी को भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एक आजीवन प्रतिबद्धता है। उनका जीवन काल हमसे कम होता है। वे अपनी बाल्यावस्था हम पर न्योछावर करते हैं, तो बुढ़ापे में हमें उनकी अच्छी देखभाल करनी ही चाहिए।
जिनके घर कुछ कारणवश पालतू प्राणी नहीं होते, वे ऐसा लाभ कैसे पा सकते हैं?
आजकल कई ऐसे पशु चिकित्सालय हैं जहां मानसिक चिकित्सा करने वाले जानवरों के साथ समय व्यतीत करके लोग लाभान्वित हुए हैं।
डॉक्टर महेश, आप किस तरह से ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं?
सरिता जी, मेरे पशु चिकित्सालय में भी यह सुविधा है। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने मरीजों को मेरे अस्पताल में भेजते हैं। इन लोगों को बेहतर होते देख बहुत अच्छा लगता है।
इस अंतर्दृष्टिपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद डॉक्टर महेश। अगले हफ्ते तक हंसते रहें, स्वस्थ रहें।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट 30 सेकंड हैं। पाठांश ग। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप एक युवा शिक्षिका द्वारा अच्छी शिक्षा और नौकरी पाने के संघर्ष पर भाषण सुनेंगे।
सभा में उपस्थित गुरुजनों को गीता कुमारी का सादर प्रणाम और मेरे छोटे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज मैं कितनी खुश और उत्साहित हूँ। ये वही स्कूल है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। मेरी बहुत सारी यादें हैं, खुशहाल, दुखद और मज़ेदार भी। एक शिक्षिका के रूप में अपनी ही पाठशाला में वापस आना मेरे जीवन की सबसे सुखद और संतोषजनक यात्रा है। आज मैं अपनी ज़िंदगी को एक चलचित्र की तरह देख सकती हूँ। यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। मेरे घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। मेरी माँ एक घरेलू नौकरानी थी, मेरे पिताजी रिक्शा चालक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि केवल अच्छी शिक्षा ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। सुबह तैयार होकर हम उनकी रिक्शा में निकल जाते थे, वो माँ को काम पर छोड़ते और फिर मुझे स्कूल। मुझे याद है मैं 8वीं कक्षा में 2 विषयों में कमज़ोर थी और हमारी शिक्षिका पाठशाला के बाद अतिरिक्त सत्र लेने वाली थी। ये सत्र मुफ्त थे, परंतु माँ को चिंता थी कि अकेली लड़की घर वापस कैसे आएगी। इसलिए मेरे पिताजी देर तक रिक्शा चलाते और शाम को मुझे साथ लाते। अगले कई वर्षों में मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके उच्च अंक प्राप्त किए। इससे मेरी आगे की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये सब माता पिता का आशीर्वाद और समर्पित शिक्षकों के सहयोग के कारण ही हो सका। मेरे शिक्षक माता पिता से कहते थे, आपकी बेटी का पढ़ाई के प्रति समर्पण और दृढ़ निश्चय उसे बहुत आगे तक ले जाएगा और सफल बनाएगा। इसी समय घर के बुजुर्गों को मेरी शादी के लिए प्रस्ताव मिलने लगे। मेरे माता पिता ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। दोनों ने कहा कि पहले पढ़ाई, अच्छी नौकरी और फिर शादी। मुझे भी लगता है कि शादी करने के लिए एक सही समय और उम्र होती है। फिर मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की, परंतु इसके बाद मुझे अंशकालिक नौकरी करनी पड़ी क्योंकि दुर्भाग्य से मेरे पिताजी का निधन हो गया और घर की जिम्मेदारी मेरी माँ के कंधों पर आ गई। इससे हमें आर्थिक रूप से मदद मिली। नौकरी के साथ मैंने शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यास भी पूर्ण किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसी स्कूल को क्यों चुना। युवावस्था में मैं देखती थी कि हमारी बस्ती की लड़कियां नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती थी। कारण चाहे जो भी हो, दुर्भाग्य से आज भी ऐसा होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने शिक्षकों की तरह पथ प्रदर्शक बनकर लड़कियों पर एक अमिट छाप छोड़ पाऊंगी। मेरे पति मेरी तरह ही वंचित बच्चों, विशेषकर लड़कियों के उत्थान के लिए मेरे जुनून में मेरा साथ देते हैं। महिला सशक्तिकरण के पहले पायदान पर हैं लड़कियों की शिक्षा। आज मैं शपथ लेती हूँ कि जब तक मेरे स्कूल की लड़कियाँ शिक्षा पूरी कर अच्छी नौकरी नहीं पा लेतीं, तब तक मैं आराम नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे अनुभव प्रेरणात्मक साबित होंगे। धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
सभा में उपस्थित गुरुजनों को गीता कुमारी का सादर प्रणाम और मेरे छोटे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज मैं कितनी खुश और उत्साहित हूँ। ये वही स्कूल है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। मेरी बहुत सारी यादें हैं, खुशहाल, दुखद और मज़ेदार भी। एक शिक्षिका के रूप में अपनी ही पाठशाला में वापस आना मेरे जीवन की सबसे सुखद और संतोषजनक यात्रा है। आज मैं अपनी जिंदगी को एक चलचित्र की तरह देख सकती हूँ। यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। मेरे घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। मेरी माँ एक घरेलू नौकरानी थी, मेरे पिताजी रिक्शा चालक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि केवल अच्छी शिक्षा ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। सुबह तैयार होकर हम उनकी रिक्शा में निकल जाते थे, वो माँ को काम पर छोड़ते और फिर मुझे स्कूल। मुझे याद है मैं 8वीं कक्षा में 2 विषयों में कमज़ोर थी और हमारी शिक्षिका पाठशाला के बाद अतिरिक्त सत्र लेने वाली थी। ये सत्र मुफ्त थे, परंतु माँ को चिंता थी कि अकेली लड़की घर वापस कैसे आएगी। इसलिए मेरे पिताजी देर तक रिक्शा चलाते और शाम को मुझे साथ लाते। अगले कई वर्षों में मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके उच्च अंक प्राप्त किए। इससे मेरी आगे की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये सब माता पिता का आशीर्वाद और समर्पित शिक्षकों के सहयोग के कारण ही हो सका। मेरे शिक्षक माता पिता से कहते थे, आपकी बेटी का पढ़ाई के प्रति समर्पण और दृढ़ निश्चय उसे बहुत आगे तक ले जाएगा और सफल बनाएगा। इसी समय घर के बुजुर्गों को मेरी शादी के लिए प्रस्ताव मिलने लगे। मेरे माता पिता ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। दोनों ने कहा कि पहले पढ़ाई, अच्छी नौकरी और फिर शादी। मुझे भी लगता है कि शादी करने के लिए एक सही समय और उम्र होती है। फिर मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की, परंतु इसके बाद मुझे अंशकालिक नौकरी करनी पड़ी क्योंकि दुर्भाग्य से मेरे पिताजी का निधन हो गया और घर की जिम्मेदारी मेरी माँ के कंधों पर आ गई। इससे हमें आर्थिक रूप से मदद मिली। नौकरी के साथ मैंने शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यास भी पूर्ण किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसी स्कूल को क्यों चुना। युवावस्था में मैं देखती थी कि हमारी बस्ती की लड़कियां नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती थी। कारण चाहे जो भी हो, दुर्भाग्य से आज भी ऐसा होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने शिक्षकों की तरह पथ प्रदर्शक बनकर लड़कियों पर एक अमिट छाप छोड़ पाऊंगी। मेरे पति मेरी तरह ही वंचित बच्चों, विशेषकर लड़कियों के उत्थान के लिए मेरे जुनून में मेरा साथ देते हैं। महिला सशक्तिकरण के पहले पायदान पर हैं लड़कियों की शिक्षा। आज मैं शपथ लेती हूँ कि जब तक मेरे स्कूल की लड़कियाँ शिक्षा पूरी कर अच्छी नौकरी नहीं पा लेतीं, तब तक मैं आराम नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे अनुभव प्रेरणात्मक साबित होंगे। धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास शेष समय है।